মজার তো থাকাই বড় মজার তো থাকি শ্রদ্ধা মূল্য সুচা নাম সেই হাতে সে শ্রদ্ধা মূল্য সুচা নাম সেই হাতে সে আজি শ্রদ্ধা মূল্য সুচা নাম সেই হাতে সে অধিকারী তো দেখো দার কষি নাম কিনবে ভাই যদি নাম কিনবে ভাই নাম কিনবে ভাই নাম কিনবে ভাই তুমি আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই আমার সঙ্গে মহাজনের কাছে যাই তুমি আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই আমার সঙ্গে চলো জনের কাছে যাই তুমি কিনবে কৃষ্ণ না তুমি কিনবে কৃষ্ণ তুমি কিনবে কৃষ্ণ না তুমি কিনবে কৃষ্ণ না আমি পূর্ণ হবে কামি পূর্ণ হবে দয়াল নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ দয়াল নিত্যানন্দ দয়াল নিত্যানন্দ করবলানন্দ করবলানন্দ আমার সমাত করবলানন্দ সমাত্র করবলানন্দ সকল শব্দ বলে পাইবে সকল কৃষ্ণ শিক্ষা কৃষ্ণ শিক্ষা কৃষ্ণ শিক্ষা কৃষ্ণ শিক্ষা ধন বিস্তার না করে অপেক্ষা বিস্তার আমার জাতি ধন বিস্তার না করে অপেক্ষা বিস্তার না করে অপেক্ষা ঘরে মায়া চার মায়ার যায় মায়া যায় মায়া যায় গৃহ থাক না থাকে জানি যায় ভালো আমি থাকে গৃহে থাকে আমি থাক না থাকে জানি যায় গৃহে থাকো আমি থাক না থাকে জানি যায় নাই কলির ভাইর কলির ভলির ভাছন বাল দেবাই বলাব আছন বাল দেবাই দেব বিনোদ দাসি কিনোদ দাসি ক
তস্মৈ জগৎ মঙ্গল মঙ্গলায়
विचैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वत्रे मदीय परम आराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज श्री चरण सर्वे আমার অনন্ত গুরু সত্তম জন প্রণতি নিবেদন করছি তৎপশ্চাৎ অভিন্ন গুরুপাদ পদ্ম শিক্ষা গুরু ওম বিষ্ণুবাদ অষ্ট শতু শ্রীনাথ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের শ্রী চরণে আমার অনন্ত গুরু জন্য প্রণতি নিবেদন করছি তৎপশ্চাৎ বৈষ্ণববৃন্দ সন্ন্যাসী বৃন্দ সকলের চরণে আমার যথাযথ জন্য প্রণতি নিবেদন করছি আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা গুরু বৈষ্ণব গণের আনুগত্যে বিশেষ করে শ্রী মহারাজের আনুগত্যে আমরা পরীক্ষা পরিক্রমা মুখে বর্তমান যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি এইটি একটি হচ্ছে সুরভি কুঞ্জ তারপর যুগে ইন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভগবানের চরণে অপরাধ করলেন সাত দিন ভগবানের লীলা বুঝতে পারলেন না সাত দিন যেমন প্রবল বৃষ্টির দ্বারা কিছুই করতে পারলেন না অবশেষে বুঝতে পারলেন যে আমি ভীষণ অন্যায় করেছি অপরাধ করেছি প্রভুর চরণে সুতরাং কিভাবে আমার এই অপরাধ ক্ষমা হবে তাই তিনি সুরদেবীকে নিয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে এলেন হে সুরদেবী দেবী আপনি কৃপা করুন আমি তো আর যেতে পারছি না প্রভুর সামনে সুরভি দেবী বললেন যে কোন চিন্তা নেই চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি পরবর্তীকালে ভগবান কৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু তার অনুশোচনা এখনো গেল না তাই তিনি দেখছেন যে অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ হচ্ছে নবদ্বীপ ধাম গৌর লীলা এই জন্য তার মনের বাসনা তিনি সুরভি দেবীকে বললেন যে আমার তো অন্তরে অপরাধ করা দূরীভূত হলো না কি করে হবে বললে চলে যায় গৌর ভূমিতে হ্যাঁ গৌর ভূমিতে গেলে গৌর ধামের মধ্যে গিয়ে যদি হা গৌর বলে আমরা ক্রন্দন করতে পারি তাহলে আমাদের সকল অপরাধ দূরীভূত হবে এই জন্য সুরদেবী ইন্দ্রকে নিয়ে এইখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন পরবর্তীকালে সুরভি দেবী এবং ইন্দ্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারেন আর মহাপ্রভু তাকে অভয় দান করলেন যে তোমার আর কোন চিন্তা নেই তুমি গৌর ভূমিতে এসেছো এখানে একবার হা গৌর বলে যদি তুমি করতে পারো তাহলে তোমার সকল কোটি কোটি জন্মের অপরাধ সমস্ত মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হবে দেবপ্রেম নামেতে ভিড় হয় সুরভি সততে এখানে রয় কৃষ্ণ মায়াবশে দেবেন্দ্র জবে ভাষায় গোকুল নিজ গৌরবে গোবর্ধন গিরি ধরিয়া হয়ে রক্ষিল গোকুল যত্ন করে ইন্দ্র দর্শ চূর্ণ হইলে পর অপরাধ মার্জনা করে পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধরে যার সমুদ্র নন্দত নয় সমিল ইন্দ্রে দিল অভয় তথাপি ইন্দ্রে রহিল অভয় সুরভি নিকটে তখন কয় কৃষ্ণ লীলাময়ী বুঝিতে নারী অপরাধ মম হইল হরি শুনেছি গরিবে রবীন্দ্র সুত করিবে নদিয়া লীলা অতি অদ্ভুত তাতে সে সময় মোহিত হব অপরাধী পূর্ণ হয়ে রহিব তুমি তো সুরভি সকলেই জানো করহ এখন তার বিধান সুরভি বলিল চলহ যাই নবদ্বীপ ধামে ভোজি নিমাই দেবেন্দ্র সুরভি এসায় আসি গৌরাঙ্গ ভজন করিল বুঝি গৌরাঙ্গ ভজন সহজ অতি সহজ তার ফল বিপতি গৌরাঙ্গ বলে ক্রন্দন করে গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্তরে কিবা অপরূপ রূপ লাবণী দেখিল গৌরাঙ্গ সুতিমা খানি আদ আদ হাসি বড় রূপ প্রেমে গদ গদ রথে রূপ হাসিয়া বলেন ঠাকুর মন জানিন বাসনা আমি তো তোর ইন্দ্রকে বলতেন অল্প দিন আছে প্রকট কাল নদিয়া নগরে দেখিবে ভাব, সে লীলার সময় ছবিবে মোড়ে মায়াজাল আর না ঘরে তোরে। এত বলে প্রভু অদৃশ্য হয়, সুরভি সুন্দরী তথায় রয়ে, অসত্য নিকটে রহিলা দেবী, নিরন্তর গৌর চরণ সেবী। গোচিন্ত হইল নাম হেতায় পুরয় ভকত কাম। গো মানে গাবি, দ্রুম মানে বৃক্ষ। এইখানে একটা বিরাট বটবৃক্ষ ছিলেন, এই বটবৃক্ষের তোলায় সুরভি দেবী তিনি অবস্থান করতেন, আর ইন্দ্রকে এখানে নিয়ে ভজন করতেন। কুটির বাদিয়া ভজে অনায়াসে গৌর চরণে মজে, এই দ্বীপে প্রভু মৃকন্দ সুত প্রলয় আসিল সত অদ্ভুত। স্বল্প আয়ু পাইল মুনি প্রলয়ে বড়ে ইতিপদ্মনি, জলময় হইল সমস্ত স্থান সদাবার বিবে করে সন্ধান। আর এইখানতে মৃকন্দ সুত মার্কন্ড ঋষি তিনি এখানে সাকল্প কর্মই লাভ করেছেন। মহাপ্রলয় হয় তখন তিনি ভাসতে ভাসতে ঘুরে ঘুরে এইখানটায় এসে আছে। আর এই ষোলক্রোশ ধাম কিন্তু প্রলয়ের সময় ডোবে নাই, যেমন কাশী হচ্ছে অবিমুক্ত ক্ষেত্র। যখন মহাপ্রলয় হয় শিবসাগর ত্রিশূলের মাথায় সব কাশী ক্ষেত্রকে তুলে ধরেন, যত জল পারে আরো ত্রিশূল অত উঁচু হয়, এই জন্য ওটা প্রলয়ের মধ্যে ডোবে না। তদ্রুপ এখানে এই গৌরধাম হচ্ছে তিনময় ধাম, এই তিনময় ধাম মহাপ্রলয় আসলো এর পায় নেই বা এটা ধ্বংস হয় না, এই জন্য উনি ঘুরতে 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 বহুদিন যাবৎ এইরকম প্রলয়ে ঘুরে ঘুরে এইখানে এসে উপস্থিত হন। ফাঁসিয়া ফাঁসিয়া চলিয়া যায়, হ্যাঁ কেন হেন গড় লইনু হয় ষোলক্রোশ মাত্র নদিয়া ধাম, জাগিয়া ভকতে যায় বিশ্রাম। দেখুন ধাম ভক্তকেই আশ্রয় দেন, জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি, মহাকৃপা করে সুরভিতায় যতনে মনিরে হেথা উঠায়, সম্বির লইয়া মৃকন্দ সুত দেখিল গোদ্রুম দ্বীপ অতি অদ্ভুত। শতকোটি ক্রোশ বিস্তার স্থান নদ নদী শোভা প্রকাশমান, তরুলতা কত শোভয় তথা ভক্তিগণ গায় গৌ শ্রী গৌর যথা, যোজন বিস্তার অসত্য হেরো সুরভিকে তথা দর্শন কর। আকুল মুনি তখন সুরভির প্রতি বলে বচন, তুমি ভগবতীর আতহ প্রাণ দুগ্ধ দিয়ে মরে করহ ত্রাণ। সুরভি তখন সদয় হয়ে পিয়াইল দুগ্ধ মুনির লয়ে, সবলয় আমৃকন্ড শুনো সুরভির প্রতি কয়ে গুণ, তুমি ভগবতী জননী মোর তোমার মায়ায় জগৎ ভোজ। না বুঝি আমি লয়েছি বর সপ্তকল্প জীব হয়ে আমার, প্রলয়ের সময় পড়ে দুঃখ নানা বিক্লেশ নাই চটু, কি করি জননী বলব মোরে কিসে বা যাইব এ দুঃখ তরে। সুরভি তখন বলি বাণী বজব গৌর পর দুখানি, এই নবদ্বীপ প্রকৃতির পার প্রভু নাশ নাই হয় ইহার, কর্মচক্রে ইহার সর্বক্রোধ পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দোষ। আপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে জ্বর মায়া কেবা কেহ নাহি জানে, নবদ্বীপে দেখো অপূর্ব অতি চারিদিকে বেড়ে বিরজার সতী, শত কোটি ক্রোধ প্রত্যেক খণ্ড মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্য, অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মান অন্তর্দ্বীপ তার কেশরের স্থান, সর্বতীর্থ সর্ব দেবতা ঋষি গৌরাঙ্গ ভজিকে হেতায় বসি, তুমি মার্কন্ডে গৌরাঙ্গ পদ আশ্রয় করো জানি সম্পদ, অকৈত ধর্ম আশ্রয় করো ভক্তি মুক্তি বাঞ্চা সুদরে পরিহর ধর। গৌরাঙ্গ ভজন আশ্রয়ে বলে মধুর প্রেম তো লভিবে বলে, সেই প্রেম জবে হৃদয়ে বসে ভাষায় বিলাস কলার রসে, হৃদয়ের আদা পদ আশ্রয় হয় যুগল সেবায় মানুষ রয়, সেবার সুখ অতুল জানো অবেদ নির্বাণে অপার তো গানো। সুরভি বচন শুনিয়া মুনি জোরে জোরে করি বলে অমনি, শ্রী গৌর চরণ ভজিব যাবে আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে। সুরভি কহিল সিদ্ধান্ত তার শ্রী গৌর ভজনে নাহি বিচার, শ্রী গৌর বলিয়া ডাকিবে যাবে সমস্ত কর্ম বিনাশ হবে, কিছু নাহি রবে বিপাক আর উঠিবে তোমার ভব সংসার। কর্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল মুসিবে সমূল হয়ে বিকল তুমি তো মজিবে গৌরাঙ্গ রসে হজিবে তার এ দিতে বসে মারকন্দে শুনি আনন্দে হাসে গৌর বলি কাঁদে কখনো হাসে এই দেহ জীব পূর্ব স্থান মারকন্দে যথা পাইল প্রাণ গৌরাঙ্গ মহিমা নিতাই মুখে শুনি দীপ থাকে পরম সুখে সে স্থান স্থানে সেদিন যাপন করি মধ্য দিকে চলে বলিয়া হরি নিতাই জান্নবা চরণ সার জানিয়া ভগতি বিনোদ সার নিতাই আদেশ মস্তকে ধরে নদিয়া মহিমা বর্ণন করে সতীনন্দন গৌর হরি কি গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি
জ্ঞান দেবীরাম জ্ঞানাঞ্জন তস্মৈ শ্রী গুরবে নম গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় ইষ্টদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ আজালুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ
মেরে সাথ এক সাথ বলো হাত উঠা করকে হাত উঠিয়ে বলো বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হামলোক শ্রীলা গুরুজি কা অনুগত্য মে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে অভি যে স্থান পর উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ ইয় স্থান কা নাম গোত্রুম হ্যাঁ ইয় স্থলী অভিরনা ব্রজমন্ডল পহলে হামলোকো নে শ্রবণ কিয়া অগর কই ব্রজমন্ডল কা পরিক্রমা করে তো উনকো কেবল ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করনে কা হি ফল মিলেগা লেকিন নবদ্বীপ ধাম কা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ জব হাম নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেনগে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করনে কা সাথ সাথ এক সাথ মে হামারা দোনো পরিক্রমা হো জায়েগি এক মে তো বৃন্দাবন কা পরিক্রমা হো জায়েগি উসকো সাথ সাথ মে ফির নবদ্বীপ ধাম কা পরিক্রমা কা ভি ফল মিল জায়েগা দোনো হাত মে লড্ডু হ্যাঁ इसलिए यह स्थान जब ये भांडरी तट है हम लोग वृंदावन में देखा होंगे भांडरी तट जहां पर भगवान ने सख्य सास्य और पात्सल्य सख्य और मधुर रस जहां पर प्रकाशित किया था कृष्ण जहां पर सखाओं के साथ में गैया चराए करते थे जहां पर नंद बाबा कभी कृष्ण को लेकर कभी गैया चराने जाते तो वहां पर जहाँ पर राधा रानी को साथ में श्याम सुंदर का गंधर्व विवाह हुई थी जहाँ पर श्याम सुंदर को साथ में श्री राधा रानी ने मल्ल क्रीड़ा की है जहाँ पर कृष्ण को श्रीमती राधा रानी जहाँ पर प्रचार दिए और जहाँ पर राधा रानी का कृपा कटाक्ष से जनता बड़ा खाते न विमूर्ति राधा रानी का केवल एक आंखों का इशारा पर ही जहाँ पर श्याम सुंदर का खलितम शिखंडम जहां पर उनको मोर पंख गिर पड़ा था जहां पर उनको हाथ की बंसरी गिर पड़ती जहां पर उनको कपड़ा कब खिसक जाता है उनको पता नहीं चलता इसलिए वह यहाँ आने पर वहां जाने का फल यहाँ अपने आप मिल जाएगी यहाँ ये जो स्थली है यह स्थली जैसे नंदगांव का अंतर्गत है इसलिए यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे ब्रज में कभी कभी जैसे ब्रज गोपियों के घर में मखन चुराए करते थे यहाँ पर भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर आते ही वही नंदगांव और गोकुल को उनके याद आ जाता था इसलिए यहाँ पर गोपियों को घर घर में चैतन्य महाप्रभु जा करके यहाँ पर भिक्षा करते थे दूध का लकलकी हाँ बना करके भी खाए और कभी दूध का भिक्षा मखन की महाप्रभु भिक्षा किए इसलिए यहाँ पर आने पर नंदगांव जाने का जो फल है यहाँ आने पर आपको नंदगांव जाने का भी फल मिल जाएगा और नंद ग्राम का आपको पता है जहाँ पर उद्धव ब्रज गोपियों की संवाद है जहाँ पर उद्धव प्यारी किस प्रेम को उद्धव जैसे व्यक्ति दर्शन करके ब्रज गोप गोपियों की चरण की धूल प्रार्थना किया। यहाँ पर राधा रानी के अंदर में जो दीप उन्माद चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प जितने तरह का प्रेम की वैचित्र जहाँ पर श्री राधा रानी के अंदर प्रकट हुई, जिसको देख करके उठा भी देश की गोपियों की चरण की धूल को उन्होंने प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ आने पर उसका भी फल आपको अपने आप मिल जाएगी। देखो दोनों तो हाथ में लड्डू ही लड्डू है, और ये जो स्थली है कहती है नवद्वीप है, नवद्वीप मतलब जहाँ पर नौ द्वीप है, और कहते ये हम प्रजन ये परिक्रमा करने पर विशेष फल क्या मिलेगा, कहते उसका तो फल मिल जाएगा लेकिन एक विशेष फल मिलेगा। बोले क्या फल है, कहते साधन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, तो जितने तरह का साधन में नौ तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम। इसलिए ये नव विद्या भक्ति को एक एक भक्ति को अंग को जागरण करते हुए एक एक भक्तों ने भगवत प्राप्त किया, और यहाँ आने पर कौन सा भक्ति जागरण होगा, कभी यहाँ आने पर कभी ये जो धाम है कभी ये कीर्तनाख्या भक्ति है। इसका मतलब है यहाँ पर आने पर भगवत कीर्तन करने का जो फल है यही मिल जाएगा। इसलिए बताए साधारण मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण जी के धारे महाशक्ति कितने पार मध्य सर्वश्रेष्ठ, कभी सारे भक्ति को अंग 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 में नौ तरह का अंग में पांच तरह का भक्ति अंगों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। उसमें भी श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, लेकिन उसमें भी कभी जो कीर्तनाख्या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसलिए मर्तव्य कृतित मर्तव्य इच्छावय, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज अगर कोई अभय बनना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए, कहते मर्तव्य कृतित मर्तव्य इच्छावय, कहते तीन तरह का भक्ति याजन करे श्रवण कीर्तन और स्मरण, कहते वह भक्ति के अंदर में कहते कीर्तनाख्या भक्ति को बीच में रखते हैं, कहते क्यों, कहते कीर्तनाख्या भक्ति कहते ये श्रवण और स्मरण कहते ये दो भक्ति अंगों को ये पूरा करता है। अगर जैसे हम जोर जोर से कीर्तन किया तो जोर जोर से कीर्तन करने पर क्या होगा, अपनी आप श्रवण हो गया, जिस भी जो कीर्तन करेंगे जिसको सुनेंगे वो अपनी आप स्मरण हो जाएगा। इसलिए कहते कीर्तनाख्या भक्ति याजन करने पर ये दो तीन तरह का भक्ति याजन होता है, इसलिए कीर्तनाख्या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो किसी जिसने प्रश्न किया था भैया ये कीर्तन तो जिहा का काम है लेकिन जो स्मरण है वो तो अंतर हृदय की काम है, इसलिए कीर्तन करना तो आसानी लेकिन किसी जी को स्मरण करना बहुत कठिन है, कीर्तन तो आसानी से हो जाता है, इसलिए ये स्मरण को श्रेष्ठ नहीं बोल करके कीर्तन को श्रेष्ठ क्यों बताया। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कोई वस्तु ज्यादा कठिन यहाँ पर विचार का विषय नहीं, लेकिन विचार का विषय है कीर्तन को जरा विशेष काम किया होता है वो चीज को देखो। इसलिए जब कोई स्मरण कर रहा है अगर यहाँ पर जोर जोर से कोई कीर्तन करेगा तो वो स्मरण नहीं कर सकता है, जैसे हम कोई श्रवण कर रहा है अगर जोर जोर से कोई कीर्तन करे तो फिर श्रवण को भी तोड़ देगा। बोले क्यों, यदि जो कीर्तनाख्या जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इसलिए कीर्तनाख्या भक्ति जागरण करने पर सारे भक्ति का अंग अपनी आप जागरण हो जाता है। इसलिए हमारे एकादश स्कंध में बताया एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग गुरुचित उससे ही असत्यत रोग विरोधी नित्य लोक वाच्य, इसलिए कहते हैं कि कीर्तनाख्या भक्ति जागरण करने पर कीर्तन प्रभावे स्मरण है वे सकाले भजन निर्जन संभव, इसलिए अगर उच्च स्तर करो हरि नाम रब जो बहुपात कहते हैं उच्च स्तर में हरि नाम कीर्तन करो, कीर्तन के द्वारा ही अपनी आप ये भक्ति अपनी आप स्मरण सबके सब होगा। हर कीर्तन इसलिए परम विजय थे कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तव 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 गतिरंगता, इसलिए कलयुग में अगर कोई हरि नाम कीर्तन को छोड़ करके दूसरे अगर कोई भक्ति अंग को जागरण करे तो कहते करने पर भी फल नहीं मिलेगा, केवल कीर्तन को द्वारा ही विशेष फल है। इसलिए कहते यहाँ आने पर कि जो कीर्तन करने का जो फल क्या है, कहते कीर्तन का फल है चित दर्पण मार्जनम भव महादवाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम चित्ता वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम परमात्म स्नपनम परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही कीर्तन
कृष्ण संकीर्तन को दोहराई, जिनका धीरे धीरे भगवत भक्ति अंग जागरण करते करते अंतिम में संपूर्ण रूप में कृष्ण रसों में जीव को डूबने का सौभाग्य केवल ये कीर्तना के भक्ति जागरण करने पर होता है। इसलिए यहाँ आने पर अपने आप इतने सारे एक कीर्तन करने का भक्ति आपको अपनी आप मिल गई, ये विशेष बात है। और यहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया, जब यहाँ पर जिस समय इंद्र ने संपूर्ण ब्रज को उन्होंने डुबाने के लिए कोशिश की, आप लोगों को पता है उस समय कैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण ने कैसे गिरिराज पूजा किए, इंद्र का पूजा बंद करा के उन्होंने गिरिराज की पूजा करवाए और इंद्र को क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या किया, पूरा संपूर्ण ब्रज मंडल को मैं बहा दूंगा। लेकिन जिस समय इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज मंडल को बहाने के लिए कोशिश किया, सारे ब्रजवासी कृष्ण चरण में शरणागत हो गए। शरणागत होने पर कृष्ण ने क्या किया, यदि गिरिराज गोवर्धन को जैसे एक हाथी एक कमल पुष्प को उठा ले, उसी तरह उन्होंने संपूर्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की, इसलिए इंद्र ने सारे उन्नत चेष्टा सारे ताकत लगा लिया। 7 दिन तक मुसलधार से उन्होंने आंधी तूफान और वज्रपात और शिलावृष्टि और बारिश करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र 7 दिन के बाद में बोले देख करके आओ तो ब्रज में क्या स्थिति है। एक दूत आकर के देखा, केवल ऊपर ऊपर से देखा, गोवर्धन ऊपर से जा करके बोला महाराज एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब के सब मर गए, ब्रज का तो सत्यानाश हो गया। और एक को भेजा तू जा करके देख, दूसरे आकर के देखा कृष्ण तो गिरिराज गोवर्धन धारण करके रखे, जितने सारे ब्रजवासी लोग कीर्तन कर रहे हैं आनंद से और कृष्ण एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन धारण करके रखा, वहां का स्थिति तक भी मरे नहीं। जब फिर इंद्र के पास में गया तो इंद्र ने कहा क्या ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया, तो ब्रज का क्या सत्यानाश हो जाएगा, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले क्यों, जब वो बोला है कि चिट्ठी तक भी नहीं, मैंने देखा कि चिट्ठी तक भी नहीं मरा, तो सबके सब आनंद पूर्वक कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए इंद्र को जब पता चला ये तो साधारण नहीं, ये तो फिर उन्होंने पैर को मारे गए अपना गुरु बृहस्पति के पास में। चलो गुरुदेव हमारा बड़ा सत्यानाश हो गया। बोला कैसे, सारी घटना को बताए, मेरे को पता नहीं था ये कौन, देखा साक्षात प्राप्त पर तो भगवान है। इतने में बृहस्पति ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी के पास में चलो। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोले, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे सर्वनाश कर दिया, कुछ दिन पहले मैं भी इसी विपद में पड़ गया था, कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में नाश्ता कर रहे थे, चल आज उसी समय मैंने कृष्ण बच्चे और कृष्ण का सखाओं को मैंने चोरी किया, बाद में पता चला मेरे प्रभु का भी प्रभु है, इसलिए मैंने भी बड़े मेरे को नाक रगड़ना पड़ा, मैं भी वो अपराध में फंस गया था, पर मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या देखो भगवान का गोपाल है, गैया को जो पालन करते हैं, इसलिए गैया माता है, कृष्ण गैया को सेवा करते हैं, इसलिए इनका जो मूल है ये सुरभि गावी है, इनका ही दंतर गैया है। चलो उनका मैया सुरभि गावी के पास में जाते हैं, उनको अनुगत्य में हम चलते हैं। तो सुरभि गावी के पास में जाकर प्रार्थना किया और उन्हीं को अनुगत्य में तब उन्होंने कृष्ण के पास में आकर के उन्होंने माफी मांगे और उनको कृष्ण को उन्होंने अभिषेक कराया और अभिषेक करके उनका नाम गोविंद नाम रख दिया। कृष्ण तो अभी इंद्र को लग रहा है मेरा तो अपराध प्रभु ने माफ किया, लगता है तीन से हमने माफ नहीं किया क्योंकि हमने बहुत अपराध किए। इसलिए उन्होंने इंद्र को साधारण नहीं इंद्र हाँ, इसलिए उन्होंने देखा यही कृष्ण ही कलयुग में श्री सत्यनंदन गौरहरि रूप में राधा रानी की अंगकांति और भाव को लेकर के फिर नवद्वीप धाम में प्रकट होने वाले, और जब नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे इसी समय तो कृष्ण को पता है ये अपराध किया, मेरे पास माफी मांग रहे हैं। लेकिन गौरव अवतार में तो सबके सब भूल जाएंगे, अगर कोई आकर उनको चरण में एक बार प्रणाम कर ले, उनके चरण में शरणागत हो जाए तो भगवान उनको सारे अपराध को माफ कर देंगे। इसलिए इंद्र यहीं पर आकर के सुरभि के अनुगत्य में उन्होंने यहीं पर भजन किया और भजन करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का कृपा को उन्होंने प्राप्त किया और यहीं पर उनको सारे अपराध माफ हुआ है। इसलिए इस स्थान का नाम गो श्रुम, गो मतलब होता है गैया, श्रुम मतलब होता है वृक्ष, मतलब जहाँ पर हुए सुरभि गाभी को अनुगत्य में जहाँ पर उन्होंने आकर भजन किया। अभी प्रश्न होता है जिसने इतने बड़ा अपराध किया 7-7 दिन तक भारी दर्शन किया, फिर उन्होंने ये नवद्वीप धाम में उनको स्थान कैसे मिल गया, ये प्रश्न है। और महाप्रभु का परिकर बन गए, कोई अपराध करे तो क्या दंड मिलता है, लेकिन उनको दंड थोड़ी मिला, ये महाप्रभु के धाम में प्राप्त और महाप्रभु का दर्शन भजन ये कोई साधारण बात है। तब हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कभी जब तक देखो चैतन्य हरि चैतन्य लीला पुस्तिकाई, इसका मतलब है जिनको चैतन्य महाप्रभु का बात कृष्ण का जिनको शत्रु रूप में हम देख रहे हैं, तत्व तो हम शत्रु नहीं, तत्व तो हम महाप्रभु को लीला कृष्ण लीला को पुष्टि कर रहे हैं। अगर जय विजय नहीं होते, कंस नहीं होते, कृष्ण का लीला होता होता ही नहीं, जगाई माता ही नहीं होते, इतना कथा कहां सुना, इंद्र अगर नहीं होते गिरिराज जी कथा हम कहां सुनते, इसलिए दिखाई पड़ता है उत्तर से शत्रु रूप में तत्व हुए लोग एक रूप में महाप्रभु का लीला पुष्टि करते हैं। जब इंद्र ने पारिवर्तन तो किया है, लेकिन कृष्ण का जो बहुत बड़ी उन्होंने इच्छा पूरी की, बोले कौन सा इच्छा पूरी, कहते कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ इच्छा, कहते कृष्ण का सबसे ज्यादा इच्छा क्या है, कृष्ण का सबसे ज्यादा सुख कब होता है, जब हुए ब्रज गोपियों से और जब राधा रानी से कृष्ण मिलते हैं, तब ये सबसे बड़ा उनका आनंद है, खुश है। इसी जगत में लोग कब 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 खुश होते, जब शादी हो जाए शादी, इसलिए जब कृष्ण ब्रज गोपी और राधा रानी को मिले सबसे बड़ा आनंद है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये रासलीला करेंगे, लेकिन ये रासलीला करे कैसे, अगर ब्रज गोपियों के राधा रानी तो हो नहीं सकते, इसलिए कुछ उन्होंने पराक्रम को दिखा करके ये ब्रज गोपी और राधा रानी को आकर्षण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र को अंदर में उन्होंने प्रेरणा दे करके उन्होंने ये काम कराया। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज धारण किया, तब सब ब्रज गोपी जिस गोपियों के साथ में मिलना कठिन होता था, जिस राधा रानी को साथ में जब उन्होंने गिरिराज धारण किया, सबके साथ उनको चरण में आ गए और उनका साथ में उनको स्वच्छंद मिलन हुई राधा रानी और ब्रज गोपियों के साथ में। और वो था उनका जो रासलीला, कृष्ण का जो सर्वोत्तम लीला रासलीला है, वो रासलीला करने के लिए सबको उन्होंने आह्वान किया था। पिताई गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते इंद्र ने एक तरह से उन्होंने सेवा की है, इसलिए महाप्रभु उनको कृपा करके इसी धाम में स्थान दे दिया। इसलिए हम लोग महाराज जी का अनुगत्य में ये स्थली पर आए हैं, ये जो स्थान है जैसे इंद्र का सारे अपराध दूर हो गया था यहीं पर आकर के, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए, ये स्थान में आने पर सारे अपराध दूर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रार्थना करें, हे धाम तुम चिन्मय अपराकृत सारी इच्छा को आप पूरी कर सकते हो, हमारा जितने नाम अपराध धाम अपराध वैष्णव अपराध जितने सारे सेवा अपराध हमारा दूर हो जाए और हृदय में कृष्ण नाम की स्फूर्ति प्राप्त हो। संसार कल मुद्रोस्त कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नाम पावने को वैष्णव भो नमो नमः।
हरे कृष्ण एवरीबॉडी एनीवन हु हैज डन पारायण आफ्टर एकादशी दिस इज टाइम इज गोइंग।
আমাদের পারণ সময় হয়ে গেছে, আমরা যে কালকে একাদশী করেছিলাম এখানে আপনারা কিছু কিছু অন্ন নিয়ে নিন, অথবা ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে।
নাম বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ প্রেষ্ঠায় ভূতনায় শ্রীমতী ভক্ত প্রধান শ্রীরামী নামনে নমা বিষ্ণুপদায় রাজকে প্রয়াসে শ্রী শ্রীমার ভক্তি রান্ত নারায়ণী শ্রী নামনে লাঞ্চক শত্রু প্রেষ্ঠা Hare Krishna, so we've just come to go through Madhuit. We know that Navadvip has nine islands.
Hare Bol, Bangali Mahara ke utlo na, Pakhri Maskan utlo paap laaj aparad hai. Sab aparad gul ni kare aparad rije Maskan utlo talave. Hai jane kyeo talave na, sab tukta basta gul. Talave khen lengde sab, basta gul, kutal jaben, therapy.
We know there are nine islands, Navadvip, the Antideep Mayapur, the Mantideep Godrumadvip. Antideep Mayapur, this is Atmanivedanam. Nine islands correspond to the nine processes of Navavidyabhakti. Of these, the Mantideep is Shravanam, and then Godrumadvip. So Godrumadvip is Kirtan. So, Pujipat Rasananda Prabhu explained the glories of this place and the glories of Kirtan. when Chaitanya Mahaprabhu is instructing Sanatana Goswami. So he explains that there's nine kinds of bhakti. These are expanded to 64. And of those 64, five kinds of bhakti is very, very important. So sadhu sangha, namakirtan, bhagavata shravan, matirvas, matirvas, sadhyasi mudhyasnedam. And of these, kirtan is the most important. This is yuga dharma. So having first engaged in shravan, having heard about the glories of the holy name, having heard about the glories of the Lord, and having heard the actual holy name, then we can engage in kirtan. And while we're engaged in kirtan, we should also do smaranam, not just Hare Krishna, and the mind going everywhere. Srila Gurudev has explained that the perfection of chanting is to remember the pastimes of Krishna. So this is so dramatic. In ancient times, Markandeya Rishi, he had the boon, so-called boon, that he would live for seven kalpas. But in between all the kalpas is a great devastation. So he was being thrown around on the waves. Why did I accept his boon? Why did I accept his boon? And then by great good fortune, he found this beautiful transcendental island. And he landed here in Godrumadri. This is the place of Surabhi. So when Krishna was here in Dwapara, Indradev committed a great offense. Because Krishna thought the worship of Indra wanting to show that there's no need to worship demigods. Indra became very, very angry. And he tried to flood the whole of Braj. But Krishna, with his pinky on his left hand, he held up Govardhan 7 days and 7 nights. And Indra came to his senses and realized, oh, this is not an ordinary cowherd boy. This is actually the Supreme Lord. I'm getting all my power from him. So he came to beg forgiveness. But he realized when Brahma committed his offense and he offered prayers to Krishna, Krishna hardly heard him. So he begged Surabhi to come and pray to Krishna on his behalf. After this, Surabhi and Indra, they came here and they began to worship Gauranga in this very beautiful place. So because this place is the place of kirtan, so Nityananda Prabhu, he came and he opened Namahat here. The marketplace of the holy name. Nityananda Prabhu, he's giving the holy name almost free, but there is a price. What is that price? Shraddha. So, if we come with Shraddha according to our Shraddha, then we get the holy name, different gradations of the holy name. Also, there's another very important point in the broker's song. Bhakti Vinod, he's explained a very important point, how we can get mercy. So he says, you come along with me. Nityananda Prabhu, Mahajan, he's opened Namahat. He's freely distributing to the living entities. You come and you get the holy name. I'm going to come with you. Why? Because I'm going to get some commission. When I bring the fallen souls to Nityananda Prabhu, I get a cut. I get some payoff as well. So we understand this Namahat. It's not just that I can get delivered. If we think like this, we got a chance. But if we bring more and more people, more and more conditioned souls to Nityananda Prabhu, to know who is Nityananda Prabhu? Shri Gurudev. Why is Gurudev going to such great lengths to construct this gigantic palace in Kulagri? Why does he want thousands and thousands of devotees to come on? Why does he want thousands and thousands of devotees to come on Parikrama? Because when we perform Parikrama, the holy places, chanting the holy name and hearing Hari Katha, we get so much benefit. So the more people we bring, either here or when we're at home preaching, however, sharing, distributing books, whatever, continuing with Mahaprabhu's mission, Nityananda Prabhu's mission, the more people we get, Nityananda Prabhu's love to speak, Gurudev's love to speak, then the more mercy we get, the more we get the holy name. So it comes to this very beautiful place, and afterwards, Thakur Bhaktivinoda, realizing the importance of this place, he came here also. Here he wrote his Amrita Prabhaha Bhaskar commentary on Sri Chaitanya Charitamrita. He also completed Jiva Dharma here. He lived here with his family. From here, if we look over here, we can see the Samadhi, see the, our Guru Maharaj, our Srila Prabhupada Samadhi. So from here,
when Prabhupada Vinod was chanting, he saw great light in that direction. And then the next night also, there was a palm, a tall coconut tree, palm tree, marking the place. And he saw Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they're all dancing. So he went to that place, and he identified it all. This is Mayapur, this is Mayapur, this is the original first place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we pray in the dust of this beautiful place that we can get the mercy of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, all their associates, Prabhupada Vinod, so that we can chant the holy name with faith, receive pure holy name, and also bring many souls to the lotus feet of Sri Sri Gaurani Sai. Sai go Premanande!
मैदनपुर के अच्युतानंद मैदनपुर के अच्युतानंद कुमार भाई से फोन है इससे मठे 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 फिरे जाल
हेलो
हरे कृष्णा हेलो
हरि बोल दीदी
एकाने पहुंचे नवाने वाले मंदिर
okay I think next we go to Nityananda
मंदिर
Nityananda Sukarakul so I'll give you a call when we get there
okay this was Gojendra Kund
This was Saravi Kun.
Saravi, okay. Yeah, thank you. Jai Radhe. Jai Mahaprabhu.
Jai Radhe.